Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन बहरे नहीं है और उसके बाद भी आप क्या बोलते हैं? बेटा नहीं सुनता है, बहू नहीं सुनती है, इसका मतलब आप समझदार हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि उसके पास कान भी हैं, श्रवण की शक्ति भी है, लेकिन वो सुनता नहीं। मतलब आप केवल सुनने को सुनना नहीं कहते हो, आप मानने को सुनना कहते हो। जब वो सुन करके मानता है ना, तब आप कहते हो मेरा बेटा तो सुनता है और तुम्हारा बेटा नहीं सुनता है, क्योंकि वो नहीं मानता है। माने केवल सुनना सुनना नहीं है, श्रवण करने के बाद उसको मान लेना, उसको जीवन में अनुकरण करना ही वास्तविक श्रवण का अर्थ है। अब मैं आपको पूछता हूं कि आप सत्संग श्रवण कर रहे हो क्या? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप सचमुच श्रवण कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कि नहीं? श्रवण करने का अर्थ समझ गए ना आप? श्रवण करने का अर्थ है कि आप उसको मान रहे। किसी साधु ने बोला भैया प्रतिदिन 11 माला जप करना चाहिए, आपने सुना? आप मुसीबत में पड़ गए ना। अब आप नहीं कर पाओगे, आपकी बस हिम्मत कितनी? ओ हमने सुना। कहां सुना? आप सुनने का मतलब है कि घर में जाके 11 माला शुरू कर दिया आपने। हम केवल आपात श्रवण है। आपात इसको बोलते हैं जानकारी, मान्यता और अनुभूति। हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं। एक होती है जानकारी। जानकारी का मतलब तो इन्फॉर्मेशन, आपने सुना, आपके कान का स्वभाव है, जो भी शब्द आता है उसकी जानकारी दे देता है। जो भी आप श्रवण करते हैं, मैंने बोला गधा, आपने सुना कि नहीं? अच्छा, आपके कान खुले और मैं गधा बोलूं तो आप न चाहे तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपके इंद्रियों का स्वभाव है, वहां विषय पहुंचते ही वो इंद्रिय आपको उसकी सूचना देते हैं ये क्या है। आपकी कोई भी इंद्रिय हो, एक बार मैं बहुत छोटा था, मैंने व्रत लिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा और कई सालों तक मैंने चाय नहीं पी। एक आश्रम में गया, बुटपटांग लोग थे वहां, विद्यार्थी लोग। उन्होंने एक दिन पूछा तुम चाय नहीं पीते? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा व्रत लिया हूं। और उटपटांग विद्यार्थी, उन्होंने मुझे पकड़ा, हाथ पैर बांधे और मेरे मुख में खोल करके बेलन होता ना, बेलन मुख में ठूस दिया, बेलन में पियो अब चाय। अब उस समय भी स्वाद आ रहा था ना, अब भले ही मेरा व्रत नहीं है, मुझे चाय नहीं पीना है, फिर भी मीठा लग रहा था। आपके इंद्रिय का स्वभाव है वो, आपके इंद्रिय का स्वभाव है, वहां विषय पहुंचते ही आपको सूचना मिलना शुरू हो जाती है। क्या चीज है इसको बोलते इन्फॉर्मेशन, सूचना। इसको आप ज्यादा से ज्यादा, मैं क्रम में फिर बताऊंगा आपको, इसको ज्यादा से ज्यादा आप परोक्ष ज्ञान कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा, इसको भी परोक्ष नहीं बोलते हैं, लेकिन परोक्ष ज्ञान कर सकते हैं कि उस जानकारी में सुन रहे हैं हम। और जो दूसरी चीज होती है ना, दूसरा क्रम आता है, वो मान्यता। जो जानकारी है वो बुद्धिजन्य, और जो मान्यता है होती है वो श्रद्धाजन्य होती है। आप मान रहे हैं, माने आप स्वीकार कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म के बारे में आप मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप राम कृष्ण को मानते हैं और ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में आप जानते हैं, वह मानते थोड़ी हैं। वहां बुद्धिजन, आपके पास बुद्धि है, बहुत सारी चीजें सुनी, आप जान रहे हैं, लेकिन श्रद्धा आपके मन में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति है, आप मानते हैं। और तीसरी जो चीज है ना, वो है अनुभूति। अनुभूति माने आत्मा वर्य दृष्टव्य। इसलिए जानने का अर्थ, सुनने का अर्थ केवल सुनना नहीं है अपितु उसको मानना है। जब आप मानते हैं ना, तब कहा जाता है कि आप श्रवण करते हैं। ज्ञान इसी को तो बोलते हैं। आपको शास्त्र ने कहा कि आप शरीर नहीं है, आपने सुना? सुना कि माना कहां? आपको शास्त्र कहता है कि आप सच्चिद आनंद है, तत्वमसी, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, आत्मवेदम सर्वम, आपने सुना, सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे ये सब कन कन सिया राम। आपने सुना, श्रवण हुआ कि नहीं, ये ज्ञान है। ज्ञान को कठिन इसी अर्थ में कहा है क्योंकि सुनने के बाद वो करना कठिन है। समझना सरल है लेकिन करना कठिन। लेकिन उपासना सरल, आपको बोला जप करो वो सरल है, अभैया जप कर रहे हैं आप, पूजा कर रहे हैं वो सरल है, यज्ञ कर रहे हैं वो सरल है। लेकिन आपको शास्त्र कहता है तत्वमसि, आप शरीर नहीं है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न ज श्रोत्र जिह्वे न ज घ्राण नेत्र। अब सारी चीजें सुनी, निषेध किया और अवशिष्ट रूप से आत्मसत्ता जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो आप है। आप श्रवण तो करे और उसके बाद जानकारी भी हुई, लेकिन जब वास्तविक वहां ब्रह्म स्थिति की बात आती है वहां बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए वेदांत को, ज्ञान को कठिन कहा गया है और यही कारण है उसके अधिकारी बहुत कम है। समझ ज्ञान अनुभूति के लोग कम होने के कारण शास्त्र ने केवल 4000 मंत्रों में ज्ञान का प्रतिपादन किया और इस संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व को सामने रख करके ही ये तीन चीजें शास्त्र ने कही, कर्म, उपासना और ज्ञान। आप जब कर्म करते हैं निष्काम तो आपके मल का प्रतिबंध दूर होता है, आप उपासना जब करते हैं तो विक्षेप दूर होता है, और जब आप ज्ञान की साधना वेद वेदांत का श्रवण करते हैं, तत्वमस्यादि महावाक्यों का जब श्रवण करते हैं तो वो ज्ञान, और वो ज्ञान क्या करता है, आपके आत्मस्वरूप का अज्ञान मिटा देता है। और उस समय फिर आप पूर्णता, आप जो सुनते हैं ना ओम पूर्णमदः, आप श्रवण करते हैं कि पूर्ण सत्ता आत्मसत्ता, शोकम तरति आत्मवेद नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मय, वहां अर्जुन ने घोषणा कर दी, वो ज्ञान की घोषणा है, ये अज्ञान की निवृत्ति की घोषणा है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, यहां मोह शब्द का अर्थ अज्ञान कीजिए आप, अथवा मोह सहकृत अज्ञान सहकृत मोह मिट गया, और किससे मिटा तो स्मृति, वहां कर्म नहीं है आप ध्यान देना। वहां अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह और स्मृति लब्धा, आप पहले इधर आप लगा दीजिए उसको, लब्धा स्मृति माने आत्मज्ञान हुआ और मोह वहां अज्ञान सहकृत मोह आपका मिट गया। तो ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान मिट जाता है तो हमारे जीवन में फिर पूर्णता आती है। इसलिए कर्म, उपासना और ज्ञान कारणत्रयात्मक वेद, ये तीन चीजें आपको वेद के बारे में, और एक चौथी वेद के बारे में चीज है। अब इस चीज को थोड़ा और मन को एकाग्र करके सुनेंगे। वेद को हमारे यहां पर अपौरुषेय कहा है, हमारे जो वेद हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ क्या है, अपौरुषेय का अर्थ होता है, पौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित हो, रचना, किसी आदमी की रचना, और अपौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी भी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयन, धाता माने ब्रह्मा ईश्वर, उन्होंने जैसे पहले वेद था ना वैसे यथा पूर्वम माने कोई बदलाव नहीं। ज्ञान में क्या बदलाव है, जो वास्तविक सत्य होता है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए सत्य की परिभाषा वेदांत में सत्य की परिभाषा है, त्रयकाला बाध्यत्वम सत्यत्व, सत्य की परिभाषा बड़ी सुंदर परिभाषा है। जो कभी बदलने वाला नहीं, जो कभी मिटने वाला नहीं है उसको सत्य बोलते हैं। त्रयकाला बाध्यत्वम, तीन काल आपके सामने है, वर्तमान अतीत और भविष्य, और जो तीनों कालों में अबाधित जो सत्ता उसको बोलते हैं सत्य। यथापूर्वम, आपका जो ज्ञानात्मक जो वेद है वो जैसे पहले था वैसे ही भगवान ने इस कल्प में निर्मित किया, माने हर कल्प में ज्ञान की धारा एक है, उसमें कोई बदलाव नहीं क्योंकि वो सत्य है। और यदि आप दूसरे युग में दूसरे कल्प में यदि आप बदल के वेद बनाओगे तो क्या बनाओगे, आप बदल के कैसे बनाएंगे, उसको सत्य नहीं कहा जाएगा ना फिर। इसलिए वेद कहता है धाता यथा पूर्वम, जैसे पहले था अकल्प उन्होंने निर्माण किया। और दूसरी श्रुति कहते तस्य निश्वसितम वेदा, बड़ी सुंदर श्रुति है, ये वेद जो है वो परमात्मा के श्वास है, इस यही अर्थ है। माने ये मानवीय बुद्धि से निकले हुए ये पुस्तक ही नहीं है वेद, ये परमात्मा की रचना है, परमात्मा से निकले हुए। साक्षात परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के साथ साथ वेदों का भी सृजन किया। लेकिन मजेदार बात, या निश्वसितम, ऐसा का निश्वसितम का अर्थ होता है आप श्वास लेते हैं ना, वेद परमात्मा के श्वास है, श्वास के साथ निकले वेद, चारों वेद आपके भगवान के श्वास के साथ निकले। तो श्वास के साथ निकलने का मतलब भय निकले, इसका ऐसा भी अर्थ करना। और इसका एक दूसरा अर्थ है, आपके जीवन में श्वास जितनी सरल और अनायास चीज है ना, उतनी कोई भी नहीं है। आप इतने दिनों में आपने कितने बार आंखें मूंद ली अपनी? बारह हजारों बार। रात होते हम आंखें तो मूंद लेते हैं, और जागृत अवस्था में भी तो हम देखते देखते मूंदी तो लेते हैं। आप अपने कान कभी बंद करते हो कि नहीं करते? कितने बार कान में अंगुली डाली होगी, कपड़ा बांधा होगा। आप प्रत्येक इंद्रियों को आप आराम विश्राम देते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने प्राणों को आराम दिया है क्या? आज तक कभी आपने श्वासों को कभी आराम दिया? अरे बहुत थक गए, अब श्वास थोड़ा बंद रखो। मुझे पैदा हुए से लेके, जन्म से लेके अभी तक कभी ऐसे पांच एक मिनट कभी आपका प्राण बंद रहा हो, विश्राम को पाया, ऐसा कभी हुआ क्या? आप देखते हुए भी थक जाते हैं। आदमी काम करते करते थक जाता है, आंखें मलो हो, बहुत थक गए, कान भी थक जाते सुनते सुनते, बोले बहुत हो गया यार बस बंद करो। आपकी हर इंद्रियां थकती हैं, लेकिन आपके प्राण कभी थकते हैं क्या? जन्म से लेकर अभी तक निरंतर प्रवाहमान, लेकिन कभी थकते नहीं है। इतने सहज और इतने महत्वपूर्ण प्राण तत्व ना, ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आप वेदों में श्रवण करते हैं ना, एक बार हमारी इंद्रियों में झगड़ा शुरू हो गया, कान नाक हाथ पैर, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्म इंद्रियां सब आपस में लड़ने लगी, और उनकी लड़ाई यही थी, वर्चस्व की लड़ाई। आंखों ने कहा सबसे श्रेष्ठ हम, क्योंकि हम न दिखाए तो आप चलोगे कहां से, काम कैसे करोगे? कानों ने कहा सुनते तब ज्ञान होता है ना, नहीं तो मूर्ख रह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। श्वास ने कहा भैया, नाक ने कहा हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम श्वास को अंदर जाने के लिए जगह देते हैं, और प्लस सुगंध उगंध का पता चलता है, स्वास्थ्य वर्धक सुगंध लेते हैं और दुर्गंध से बचते हैं। आपके पैरों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हाथों ने कहा हम श्रेष्ठ, बुद्धि ने कहा हम श्रेष्ठ, सबने अपनी अपनी घोषणा कर दी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। एक महात्मा जी थे, वो अक्सर एक प्रवचन में बात बताते थे, भगवान ने जब आपको बनाया और बना के जब नीचे भेजने लगे, तो भगवान ने आपके कान में एक मंत्र दिया, आपको याद है? नहीं। भगवान ने आपके कान में एक मंत्र दिया, और मंत्र क्या था मालूम है? भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी कृति मैंने आज तक कोई नहीं बनाई। इसलिए आदमी जब नीचे आता है तो सबसे बड़ा किसको समझता है? यदि आपको किसी को वोट देना हो तो आप किसको देंगे? एक बार एक कोई व्यक्ति था, टॉलस्टॉय शायद, वो रूसी दार्शनिक था बहुत बड़ा, महात्मा गांधी जी के आसपास हुआ, महात्मा गांधी जी भी उनको मानते थे। कोई महात्मा गांधी जी का एक कोई भगत था, वो रूस गया हुआ था। ऐसी बातचीत चलने लगी तो उन्होंने सोचा कि चलो गांधी जी के बारे में मैं पूछ लूं इनको, कि गांधी जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? गांधी जी को तो दुनिया जानती थी, बड़े भारी नेता। उन्होंने पूछा कि आप हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? लेकिन प्रश्न पूछने वाले के मन में ये बात थी, ये आदमी जरूर गांधी जी की प्रशंसा करेगा, वो बोलेगा दुनिया का श्रेष्ठ आदमी है। लेकिन वो टॉलस्टॉय बड़ा विचित्र आदमी, उन्होंने कहा ये बताओ तुम अपने गांधी के बारे में पूछना चाह रहे हो, मैं सही जवाब दूं कि झूठा जवाब दूं? तो इन्होंने कहा सही सही जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम पूछना चाहते हो तो भाई, बोले दुनिया में श्रेष्ठ तो मैं हूं, और तुम झूठा जवाब चाहते हो तो बोले तुम्हारा गांधी भी, बोले दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है आप। तो उन्होंने बोला कि आप जब मूल्यांकन किसी का करते हैं तो आप एक नंबर पर किसको रखते हैं? अच्छा, आप जिसको आप अपना गुरु मानते हैं तो वहां पर भी आप क्या बोलते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी भी कम समझते हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है, कई बार आदमी बोल भी देता है कि गुरुजी आप ये समझ नहीं रहे। हम अपने गुरु को भी बोलते हैं कि आप समझ नहीं, इसका मतलब समझ नहीं है। आदमी झगड़ा कब करता है, वहां आत्म मूल्यांकन, जहां अपनी श्रेष्ठता का जब मूल्यांकन करता है वहां संघर्ष है। इंद्रियों के बारे में भी यही है, यहां हर इंद्रिय अपना मूल्यांकन, और मूल्यांकन के कारण वहां स्वयं की श्रेष्ठता का बखान है। झगड़ा शुरू हो गया, अब झगड़ा शुरू हो गया तो उससे जो बड़ा होगा वो उसका निर्णय करे। ये बड़ा उदाहरण बड़ा मजेदार है। ये वेद के उपनिषदों के जो दृष्टांत होते हैं ना, बहुत बड़े रहस्य को लेकर के होते हैं। आपस में झगड़ा हुआ और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास जाके सबने कहा कि हम में सबसे बड़ा कौन है, और सब लोग अपना अपना दावा पेश करने लगे ब्रह्मा जी के पास, हम बड़े। अब ब्रह्मा जी तो भाई पितृपुरुष हैं, वो सभी परिवारों के महत्वपूर्ण है, और जो बड़ा आदमी होता है ना वो सबको साथ लेके चलता है, वो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, पक्षपात करेगा तो बात खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी के जो उत्तर होते हैं बड़े मजेदार, फिर आपको क्रमशः कभी कभी बताया करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक को मैं यदि बोल दूं कि तुम श्रेष्ठ हो तो बाकी के तो झगड़ा मेरे से झगड़ा कर लेंगे, ये सब मेरे से नाराज हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने युक्ति बता दी उनको, भैया बोले मैं युक्ति बता देता हूं, तुम लोगों में सबसे बड़ा कौन है, और वो युक्ति तुम अपना लो और उससे अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि तुमसे बड़ा कौन है। उन्होंने कहा कि शरीर से एक 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 करके सब बाहर निकलो, और जिसके ही शरीर से बाहर निकलने से ये शरीर अमंगल होने लगे, मरने लगे, समझना वही इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ है। आंखें बाहर निकल गई, लेकिन आंखें बाहर निकलने के बाद अंधा व्यक्ति हुआ लेकिन मरा क्या। कान चले गए बहराव के जिया, हाथ चले गए लूला होके, पैर चले हुए चले गए लंगड़ा होके, बुद्धि भी चली गई। कोमा में आदमी जाता है कि नहीं, मरता थोड़ी है कोमा वाला, बुद्धि चली गई, बेवकूफ बनकर के जिया। अंत में नारायण जैसे ही प्राण तत्व इस शरीर का त्याग करने लगे, शरीर अमंगल, शरीर मरने लगा, और जैसे शरीर मरा उसी समय घोषित हुआ कि इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, प्राण। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो प्राण तत्व। शास्त्र ने इसी रहस्य को लेकर कहा है तस्य निश्वसितम वेदा, ये वेद जो है वो भगवान के प्राण है। मतलब समझ गए कि नहीं, प्राण तत्व के कारण ही ये जीवन है, और प्राण तत्व यदि ना हो तो ये जीवन संभव नहीं। अच्छा ईश्वर है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ईश्वर को भी भगवान को भी जीवन सत्ता प्रदान करने वाले कौन है, वेद है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा भाई भगवान है, आपको कैसे मालूम पड़ा ईश्वर है भगवान है, ये आपको मालूम कैसे पड़ा, आपके शास्त्रों ने बताया ना, आपको गीता ने उपनिषदों ने पुराणों ने बताया, तब जाके मालूम पड़ा कि वो भगवान है। तो भगवान की भगवत्ता भगवान की भगवत्ता पर निर्भर नहीं है, अपितु तो शास्त्रों पर निर्भर है। इसलिए शास्त्र भगवान के क्या है, तस्य निश्वसितम वेदा, प्राण है, भगवान के प्राण शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र से ही मालूम पड़ता है भगवान है। मैं एक आपको दृष्टांत बता देता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए वोलेनाचार्य, न्याय के 90 न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने 90 न्याय, भगवान के परम भक्त थे। एक बार वे जगन्नाथपुरी गए और उनके मन में ऐसा भाव था कि मैं आज ही भगवान के दर्शन करूंगा, आज जब जाऊंगा तो दर्शन करूंगा। पुराने जमाने की बात है, थोड़ा लेट हो गया, और जैसे ही वहां गए उनको मालूम पड़ा कि अब भी पट बंद हो गए। तो उन्होंने चट से पुजारी के हाथ पैर पकड़े, अरे भैया थोड़ा दर्शन कराओ, थोड़ा खोल दो खिड़की, हाँ द्वार थोड़ा, और मैं दर्शन तो कर लूं। बोले नहीं, भगवान से भी प्रार्थना की, इतने बड़े विद्वान, एक दो श्लोक भी बोला, लेकिन भगवान ने द्वार नहीं खोला। तो इनको बड़ा क्रोध आया और उदयनाचार्य जी वहां बैठ गए, और बैठ करके उदयनाचार्य जी महाराज ने एक श्लोक बोला, बड़ा अद्भुत श्लोक है। उन्होंने भगवान को श्लोक क्या बोला, वहां भगवान को गाली दी है वहां, और वो अद्भुत गाली दी ऐसी गाली दी, उन्होंने कहा ऐश्वर्य मदमत्तोसी मद अवज्ञाय वर्तसे संप्राप्ते बौद्धे काले मदधीना तव स्थिति, अरे बोले कि ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर तुम अंदर बैठे हो और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि दर्शन करना और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन मालूम है जब नास्तिक लोग तुम्हारा खंडन करेंगे उस समय देखूंगा कि तुमको बचाने वाला कौन है। जब नास्तिक लोग तुम्हारा खंडन करेंगे, नास्तिक लोग जब तुमको मिटाने के लिए जब आएंगे तब तुमको मैं बताऊंगा कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है। बोले मेरे मदधीना तव स्थिति, अरे मेरे अधीन तुम्हारी स्थिति है। यदि भक्त ना हो तो भगवान को कौन पूछेगा, शास्त्र ना हो तो भगवान को कौन जानेगा। बोले इतना जैसे बोला उदयनाचार्य जी ने चट से द्वार खोला, पुजारी को तो ऐसा लगा हवा से खोलो यार। अरे लेकिन भगवान की प्रेरणा से दरवाजा खुला और दर्शन हुए उनको। भगवान का अच्छा बात तो सही बोल रहे भाई, यदि तुम ना हो तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अरे सारे नास्तिक लोग जब मेरा खंडन करते हैं कि तू नहीं है, बकवास, भगवान नहीं है, तो भगवान है कहने वाला कौन है। भगवान कभी बोलता है क्या मैं हूं? भगवान कभी नहीं बोलते कि मैं हूं। भगवान अपने होने का दावा कभी नहीं करते हैं। इसलिए आप गिरिराज पूजन के संदर्भ में जब भगवान ने कहा था ना, भगवान ने तो इनकार कर दिया, अस्ति चेत कश्चित ईश्वर। अरे बोले कोई होगा, भगवान कभी दावा नहीं करते हैं। अरे बोले भगवान स्वयं है ना, और किसी के कहने से नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े तब दावा प्रस्तुत हो। ये दावा, अस्तित्व का दावा खतरे में पड़े तब कोई अपना प्रस्तुत करे ना। भगवान का अस्तित्व कभी खतरे में ही नहीं है। अब सूर्य को कोई कभी सोने कहते हुए भैया मैं हूं, हजारों अंधकार भी आकर के बोले कि तुम नहीं हो, सूर्य को यदि मालूम पड़ जाए अंधकार तो उसको सूर्य कैसे कहेंगे आप। तब नारायण वहां उदयनाचार्य जी को भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने सिद्ध किया कि शास्त्र ही सूचना देते हैं, वेद हैं, आपके वेद हैं इसलिए आपका भगवान है, आपके पुराण हैं इसलिए भगवान है, गीता इसलिए भगवान है। और यही कारण है वेद ने कहा तस्य निश्वसितम वेदा। वेद, शास्त्र, पुराण, ये सारे भगवान के श्वास हैं। श्वास मतलब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आप जब भी कोई बात आती है ना तो क्या बोलते हैं, बोले शास्त्र की रक्षा। आप एक बात श्रवण करते होंगे साधु महात्माओं के, शास्त्र की रक्षा करना है, वेद की रक्षा करना है, क्योंकि वही शास्त्र है जो आपको परिचय देते हैं भगवान। इसलिए तस्य निश्वसितम वेदाः, और नारायण इसीलिए वेद को कहा है अपौरुष है। माने वेद किसी भी व्यक्ति की कृति नहीं है। और इसका एक दूसरा अर्थ है, आप इसको और ध्यान से सुनेंगे। अपौरुषे का अर्थ, पौरुषे कृति में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाट हो, आप सुन चुके होंगे महात्माओं से। आपकी जो भी मानवीय कृति होती है ना उसमें चार दोष होते हैं। उसमें भ्रम होता है क्योंकि वो प्रयत्न साधन है। कोई आदमी एक सामान्य ग्रंथ भी लिखता है तो विचार करता है वहां, ये ऐसा है ऐसा है, काना, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, सारी चीजें देखता है, और कई बार करते 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 भ्रम से कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख देता है। मानवीय कृति में भ्रम होता है। और प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है कि आप आलस आ गया, अच्छा, अथवा कई बार तो प्रमाद में भी ऐसे जल्दी जल्दी में भी लिख लेता है, वो प्रमाद भी है। बहुत सारे आलस है, निद्रा है, ये सारी चीजें मानवीय कृति में आती हैं। और विप्रलिप्सा माने होता है आग्रह, दुराग्रह अथवा प्रलोभन। आग्रह आपका है सत्य के प्रति, अनाग्रह असत्य के प्रति, दुराग्रह आपको कई बार गलत चीजें लिखने की प्रवृत्ति प्रेरित करता है। आप सुनते हैं ना, जैसे आग्रह दुराग्रह में राम का भगत जो है कृष्ण को नहीं मानते हैं, कई बार ऐसा आप सुनते भी हो, कृष्ण का कोई भगत कभी राम जी को नहीं मानते हैं। ये क्या है, ये विप्रलिप्सा माने होता है प्रलोभन है। और कई ऐसे शास्त्र भी बने हैं पैसा दे के लिखवा लिया, पैसे के प्रलोभन में, या किसी को खुश करने के लिए बोल दिया, तो ये प्रलोभन में आता है। ये मानवीय ग्रंथ जो होते हैं ना उसमें प्रलोभन भी, लेकिन आपका जो वेद है ना उसमें न भय, न प्रमाद, न विप्रलिप्सा, और एक चौथा जो दोष है ना उसको बोलते कर्णापाटव। करण माने होता है उपकरण, माने इंद्रियां, और उसका अपाटव मने होता है अकुशलता। करण मने इंद्रियां, आप आपका आपकी जो इंद्रियां हैं वो करण है, उपकरण है, आपको लिखना है, आपकी बुद्धि, आपका मन, ये सारे उपकरण है। और आपके उपकरण की कमजोरी है ना, आप देख रहे हैं कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ आप सुन रहे हैं कुछ, सामने वाला बोल रहा है कुछ, क्योंकि इंद्रियों की अकुशलता है, बौद्धिक अक्षमता, और उसके कारण आपकी कृति भी वैसी बनेगी। लेकिन वेदों में कर्णापाटव नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की कृति है। ईश्वर में न भय, न प्रमाद, न कर्णापाटव, न विप्रलिप्सा, भ्रम कुछ भी नहीं। इसलिए वेद को कहा गया अपौरुष है। वेद अपौरुष है माने मानव के द्वारा रचना नहीं, ईश्वर की रचना है। और जो मानव के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ में जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष गिनाए जाते हैं, वो आपके वेद में नहीं है। इसलिए वेद आपके अपौरुषेय हैं। और उस अपौरुषेय वेदों में आप जिसका श्रवण करने कर रहे हैं कठोपनिषद, ये आपका वेद है। वेद का अंतिम भाग जो ज्ञानात्मक है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, कल आपको बताएंगे वेदांत किसको कहते हैं, उपनिषद किसको कहते हैं, बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है। आप क्रम से श्रवण करेंगे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ विराजित हैं, हम सब उनको भी प्रणाम करते हैं। और आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शां